घर, परिवार और बच्चे।
श्रोताओं, घर, परिवार और बच्चे कार्यक्रम की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं ज़हरा ज़ैदी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार करें।
श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम में हमने माँ बाप के अधिकारों के विषय की चर्चा शुरू करते हुए कहा था कि जिस प्रकार मानवीय समाज और धर्म माँ बाप को अपने संतान के प्रति जवाबदेह बनाता है और उनके लिए कुछ जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है, उसी तरह संतान को भी अपने माँ बाप के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदार ठहराता है।
विभिन्न धर्मों में माँ बाप, विशेष रूप से माँ के विशिष्ट स्थान और विशेष सम्मान का उल्लेख करते हुए हमने ईश्वरीय दूत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शिक्षाओं की ओर संकेत किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ईश्वर से ये जानना चाहा कि स्वर्ग में कौन उनका साथी होगा, तो ईश्वर ने एक युवा कसाई का पता बताया। हजरत मूसा उस युवा से मिलने और ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वो आखिर ऐसा कौन सा पुण्य करता है जिसके कारण ईश्वर उसे स्वर्ग में अपने दूत के समान उच्च स्थान प्रदान करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दिन भर की उसकी गतिविधियों को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, इसलिए कि उस युवक ने कोई भी ऐसा पुण्य अंजाम नहीं दिया था जो असामान्य हो। रात होने पर उस युवक को अपना परिचय देते हुए हजरत मूसा उसके साथ उसके घर गए तो देखा कि घर पहुंचकर सबसे पहले युवक एक बूढ़ी महिला की सेवा में उपस्थित हुआ जो इतनी कमजोर थी कि अपनी जगह से उठ भी नहीं सकती थी। हजरत मूसा ने युवक से पूछा कि घर पहुंचते ही सबसे पहले जिस बूढ़ी महिला को तुमने भोजन करवाया और उसकी सेवा की, वो कौन है? और जब तुम उसे खाना खिला रहे थे तो वो आसमान की ओर देखकर धीरे धीरे क्या कह रही थी? युवक ने जवाब दिया कि जब भी मैं अपनी माँ को खाना खिलाता हूँ और उसकी सेवा करता हूँ तो वो ईश्वर से बस एक ही दुआ करती है कि स्वर्ग में मेरे बेटे को ईश्वरीय दूत मूसा का साथी बना दे।
इस घटना से स्पष्ट हो जाता है कि माँ की सेवा और माँ के दिल से संतान के लिए निकलने वाली दुआओं का ईश्वर कितना सम्मान करता है। एक ईश्वरीय दूत जो लोगों तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने और उनके मार्गदर्शन के लिए जीवन भर तरह तरह की कठिनाइयां सहन करता है, हमेशा ईश्वर की उपासना में लीन रहता है और परोपकार करता है, उसके बाद स्वर्ग में उसे जो उच्च स्थान प्राप्त होता है, ईश्वर एक सामान्य से व्यक्ति को भी वह स्थान प्रदान कर देता है जो अपनी माँ की सेवा करता है और माँ उसे दिल से आशीर्वाद देती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईश्वर के निकट माँ बाप को प्रसन्न रखने और उनकी सेवा का क्या महत्व है।
मनुष्य की सामाजिक बोध का सही विकास पारिवारिक जीवन में संभव है, इसलिए यदि इस छोटी सी सामाजिक इकाई में बच्चों का पालन पोषण इस प्रकार से किया जाए कि वो आपस में एक दूसरे का, विशेष रूप से अपने बड़ों और माँ बाप का सम्मान करें, तो निश्चित रूप से अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान उनके स्वभाव में शामिल हो जाएगा। इस प्रकार सामाजिक स्तर पर वे दूसरों के अधिकारों का सम्मान और सामाजिक नियमों का पालन करेंगे।
विभिन्न धर्मों के ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि माँ बाप का सम्मान और उनकी सेवा को हमेशा से एक नैतिक गुण और धार्मिक नियम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट अर्थात पुराना नियम में, जिसे यहूदी अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, हम देखते हैं कि ईश्वरीय दूत हजरत याकूब जहाँ अपने बेटों को आज्ञाकारी होने के कारण आशीर्वाद देते हैं, तो वहीं कुछ बेटों को आज्ञा पालन न करने के लिए बुरा भला कहते हैं। इसी प्रकार हजरत मूसा के लिए ईश्वर के 10 आदेशों में से एक ये था कि अपने माँ बाप का सम्मान करो, ताकि ईश्वर जो इलाका तुम्हें प्रदान करेगा उसमें लंबे समय तक जीवन यापन कर सको।
इतिहास में माँ मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के हवाले से आया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ईश्वर से आग्रह किया कि मुझे कुछ नसीहत कर। ईश्वर ने कहा, स्वयं का सम्मान करो। हजरत मूसा ने पुनः आग्रह किया तो ईश्वर ने दोबारा कहा, स्वयं का सम्मान कर। हजरत मूसा ने तीसरी बार कहा, हे ईश्वर मुझे कुछ नसीहत कर। ईश्वर ने कहा, अपनी माँ का सम्मान करो। मूसा ने पुनः वही आग्रह किया तो ईश्वर ने दोहराया, अपनी माँ का सम्मान करो। मूसा ने फिर कहा कि हे ईश्वर मुझे नसीहत कर। इस बार ईश्वर ने कहा, अपने पिता का सम्मान करो। ईश्वर ने दो बार हजरत मूसा से स्वयं उनके संबंध में सिफारिश की, उसके बाद दो बार अपने दूत से माँ के बारे में सिफारिश की, अंत में एक बार पिता के बारे में सिफारिश की। ईश्वर ने माँ के बारे में उतनी ही बार सिफारिश की है जितनी बार स्वयं मनुष्य के बारे में। इससे ईश्वर के निकट माँ के स्थान और महत्व का पता चलता है। यहाँ ध्यान योग्य एक अन्य बिंदु ये है कि ईश्वर ने माँ के सम्मान और अधिकारों के बारे में दो बार सिफारिश की है, जबकि बाप के बारे में केवल एक बार। इससे स्पष्ट होता है कि माँ का स्थान और दर्जा बाप के स्थान से भी ऊंचा है।
ईश्वर हजरत मूसा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मूसा, ये ध्यान रखना कि माँ की खुशी में ही मेरी खुशी है और माँ की नाराजगी में मेरी नाराजगी। अर्थात जब कभी भी कोई ये जानना चाहे कि क्या ईश्वर हमसे खुश है या नहीं, तो ईश्वर ने इसके लिए माँ को पैमाना करार दे दिया है। अब इंसान अपनी माँ को देख ले कि वो उससे खुश है या नहीं। अगर माँ खुश है तो ईश्वर भी खुश, और अगर माँ नाराज है तो ईश्वर भी नाराज। ईश्वर की नाराजगी के परिणाम से तो हर कोई अवगत है।
ईश्वरीय दूत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के काल में बनी इसराइल समुदाय में एक युवक अनाज का व्यापार करता था। वो एक सभ्य और सुशील लड़का था। हर दिन की भांति वो एक दिन अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसके पास एक व्यक्ति आया और उसने बड़ी मात्रा में उससे गेहूं खरीदने का सौदा किया। ये सौदा उस युवा व्यापारी के लिए काफी लाभदायक था। युवा जब उस व्यक्ति को गेहूं देने के लिए भंडार पर पहुंचा तो देखा कि भंडार का द्वार बंद है और उसके पिता किवाड़ों से टेक लगाकर सो रहे हैं। ये युवा क्योंकि अपने माँ बाप का बहुत सम्मान करता था, इसलिए उसने ग्राहक से कहा, दुर्भाग्यवश मैं तुम्हें अभी गेहूं नहीं दे सकता, तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। इसके लिए मैं तुम्हें मूल्यों में कुछ छूट भी दे सकता हूँ। यदि तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो कृपया कहीं और से गेहूं खरीद लो।
ग्राहक ने कहा, मैं तुम्हारे गेहूं की कीमत बढ़ाकर दे सकता हूँ, इसलिए टाल मटोल मत करो और अपने पिता को जगा दो और गेहूं मेरे हवाले कर दो। युवा ने कहा, मैं कदापि अपने पिता को नहीं उठाऊंगा, पिता का आराम मेरे लिए इस सौदे के लाभ से कहीं अधिक मूल्यवान है। ग्राहक के आग्रह के बावजूद युवा ने उसकी बात स्वीकार नहीं की और अंततः ग्राहक सौदा समाप्त करके वहां से चला गया।
कुछ देर बाद जब बाप सोकर उठा तो उसने देखा कि बेटा निकट ही टहल रहा है। उसने कहा, बेटे इस समय दुकान बंद करके तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवक ने अपने पिता को पूरी कहानी सुनाई। बाप ये सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और ईश्वर का आभार जताते हुए कहने लगा, हे ईश्वर मैं तेरा आभारी हूँ जो तूने मुझे ऐसा शिष्टाचारी बेटा दिया है। पिता ने अपने बेटे से कहा, यदि तुम मुझे नींद से उठा देते तो भी मैं नाराज ना होता, इसलिए कि इस प्रकार का बड़ा लाभ हाथ से निकल गया, क्योंकि तुमने इतनी विनम्रता दिखाई और अपने बूढ़े बाप का इतना सम्मान किया, इसलिए मैं उस लाभ के बदले तुम्हें अपना बछड़ा उपहार में देता हूँ। मुझे आशा है कि ईश्वर इस बछड़े के द्वारा तुम्हें बड़ा लाभ पहुँचाएगा, जो उन समस्त युवाओं के लिए एक सबक होगा जो अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं। दूसरी ओर एक दूसरे इलाके में बने इसराइल समुदाय के परिवार में एक सुंदर और सुशील लड़की थी। उसकी शालीनता, सुंदरता और सुशीलता को देखते हुए उससे शादी के लिए काफी रिश्ते आ रहे थे। लड़की के दो चचेरे भाई भी उससे शादी के इच्छुक थे। उन दोनों में से एक उदार और सभ्य था, लेकिन उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी। इसके विपरीत उसके चचेरे भाई के पास काफी दौलत थी, लेकिन वो अभद्र, असभ्य और अशिष्ट था। ईश्वरीय दूत हजरत मूसा का मित्र और अनुयायी होने का केवल दिखावा करता था। लड़की ने विवाह के समस्त रिश्तों को ठुकराते हुए इन दोनों में से किसी एक से शादी का निर्णय लिया और एक सप्ताह का समय मांगा ताकि इन दोनों में से किसी एक का अपने जीवन साथी के रूप में चयन कर सके। श्रोताओं, ये चर्चा हम अगले कार्यक्रम में भी जारी रखेंगे, सुनना न भूलिएगा।